प्रिय श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी तीतुस के नाम पत्री का अध्ययन आरंभ करेंगे। इस पत्री का मुख्य विषय है खरी शिक्षा। तीतुस की पत्री में कलीसिया के अधिकारियों के विषय में दिए गए आदेश हैं, जिसमें इस बात पर बल दिया गया है कि कलीसियाओं के अगुओं का जीवन आत्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से अवश्य श्रेष्ठ होना चाहिए। पौलुस प्रेरित इस बात पर जोर देते हैं कि मसीह आचरण का आधार तो परमेश्वर का वचन है। तो आइए श्रोताओं अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पिछले दिनों यहेजकेल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे थे और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि यहेजकेल नबी की पुस्तक का अध्ययन हमने समाप्त किया। आज हम अपने नए अध्ययन को आरंभ करेंगे नए नियम की पुस्तकों में से तीतुस की पत्री। लेकिन इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के इस अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे सामर्थ्य और जीत पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और मधुर समय के लिए, जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से एक बार दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। आज जब हम अपने अध्ययन को तीतुस के पत्री से आरंभ करते हैं, उसके परिचय को देखते हैं, हमारी विनती है कि आप हमें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि हम इस पुस्तक के परिचय को समझ सकें और उसके अनुसार से इस पुस्तक का अध्ययन करने पाएं। हाँ प्रभु, हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आप अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और तीतुस की पत्री से अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम इसके परिचय को देखेंगे। तीतुस की पत्री एक अध्याय उसके 5 पद से प्रकट होता है कि पौलुस और तीतुस क्रेते के द्वीप पर एक साथ सेवा कर रहे थे। पत्र को पढ़कर हमें वहां के विश्वासियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होगी। प्रसंगवश पौलुस के मन में उसके लिए अधिक स्थान नहीं था। पौलुस वहां से किसी और स्थान को चला गया और उस स्थान से तीतुस को पत्र लिखकर निर्देश दिए कि क्रेते में एक युवा प्रचारक स्वरूप वह क्या करे। इस पत्र के लिखने का समय था लगभग सन 64 से 67। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम के पुस्तक में क्रेते में पौलुस और तीमुथियुस की सेवा का उल्लेख नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रेरितों के काम की पुस्तक में आरंभिक कलीसिया का पूर्ण ब्यौरा नहीं दिया गया है। यह वास्तव में एक बहुत छोटा वृतांत है और केवल 2 प्रेरितों की सेवा का वर्णन किया गया है। प्रथम भाग में प्रेरित पत्रस की सेवा और दूसरे भाग में प्रेरित पौलुस की, और वह भी पूरा नहीं है। थिस्सलुनीके की कलीसिया को लिखे दोनों पत्रों में पौलुस ने प्रभु यीशु के पुनः आगमन पर बहुत अधिक बल दिया है। यह उसके लिए एक ज्योतिर्मय और मनभावन आशा थी। आलोचक कहते हैं कि यह पौलुस की आरंभिक आशा थी जो बाद में बदल गई थी। तीतुस और पहला तीमुथियुस लगभग एक ही समय में लिखे गए थे, पौलुस की सेवा के अंतिम समय में। तीतुस के पत्री 2 अध्याय उसके 13 पद में पौलुस लिखता है, उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। मेरे मित्रों, पौलुस कलीसिया की धन्य आशा से रहित नहीं था। मेरे विचार में वह तेज चमक रही थी और अधिक तेज चमकेगी। दूसरा पत्रस की पत्री 1:19 में पत्रस कहता है, जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पाव न फटे। तीमुथियुस और तीतुस को प्रभु यीशु में लाने का सौभाग्य पौलुस ही को था। पौलुस दोनों को अपना पुत्र कहता है क्योंकि उसने ही उन्हें प्रभु यीशु के उद्धारक ज्ञान से परिचित करवाया था। पौलुस ने इन दोनों को पत्र लिखे थे, 2 पत्र तीमुथियुस को और 1 पत्र तीतुस को। इन पत्रों को चरवाहे के पत्र भी कहते हैं क्योंकि इनमें पौलुस इन दोनों युवा प्रचारकों को स्थानीय कलीसिया से संबंधित निर्देश देता है। कलीसिया के संचालन की पुस्तकों से हम एक पूर्ण पुस्तकालय तैयार कर सकते हैं, परंतु धर्मशास्त्र के ये 3 छोटे पत्र हमें कलीसिया के संचालन की मुख्य बातें समझा देते हैं। ये पत्र हम पर एक बात स्पष्ट करते हैं कि कलीसिया में कमी या उसकी आवश्यकता उसके प्रबंधन या उसकी पद्धति से नहीं है। आवश्यकता का मूल कारण है आत्मिकता, आत्मिक आवश्यकता। सच तो यह है कि हम इन दोनों युवाओं के विषय बहुत कम जानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि तीतुस शारीरिक और आत्मिक क्षेत्र दोनों ही में बलवंत था। अतः तीमुथियुस की तुलना में तीतुस के प्रति पौलुस को अधिक चिंता नहीं थी। तीतुस संभवतः अधिक परिपक्व था और अधिक क्षमता भी रखता था। तीमुथियुस एक यहूदी था जिसका पौलुस ने खतना करवाया था। गलातियों के पत्र में पौलुस लिखता है कि वह तीतुस को अपने साथ यरूशलेम ले गया था, और गलातियों के पत्र 2 अध्याय उसके 1-3 पद के अनुसार अन्य जाति होने के कारण पौलुस उसका खतना करवाने के पक्ष में नहीं था। परंतु प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 1-3 पद में लिखा है कि पौलुस ने यरूशलेम में तीमुथियुस का खतना करवाया था। क्योंकि पौलुस ने एक युवा प्रचारक का खतना करवाया और दूसरे का नहीं। गलातियों के पत्र 6:15 में पौलुस कहता है, न खतना और न खतना रहित कुछ हैं, परंतु नई सृष्टि हैं। पौलुस कहता है कि वह सबके लिए सब कुछ बन जाना चाहता था कि कुछ को मसीह में जीत ले। यहूदियों के साथ वह यहूदी और अन्य जातियों के साथ वह अन्य जाति बनना चाहता था। उसने तीमुथियुस का खतना करवाया था क्योंकि वे आराधनालय में जाना चाहते थे, परंतु यरूशलेम की महासभा में सुसमाचार संकट में था और पौलुस व्यवस्था का अंश मात्र भी विश्वास में प्रवेश करने देना नहीं चाहता था। प्रेरितों के काम 15 अध्याय में हम देखते हैं कि उसने तीतुस का खतना करवाने से इनकार कर दिया था। मेरे मित्रों, मसीही जीवन के लिए छोटे मोटे नियम बना लेना और उनके सहारे जीवन निर्वाह करना बहुत ही जोखिम भरा काम है। यदि आपका प्रभु यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध है तो अन्य सब कुछ नगण्य है। तीतुस को लिखे इस पत्र में हमारे सामने नए नियम की कलीसिया का समाज में संस्था स्वरूप परिपूर्णता का एक अति उत्तम चित्रण है। मैं अनेक जनों को सुनता हूं कि वे कहते हैं, हम नए नियम की कलीसिया के सदस्य हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी कलीसिया में कोई मरा है? मुझे पूरा विश्वास है कि वे कहेंगे उन्हें ऐसा अनुभव नहीं हुआ है। हम देखते हैं कि नए नियम की कलीसिया आरंभिक कलीसिया में हनन्याह और सफीरा गिरकर मर गए थे क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला था। इसे हम प्रेरितों के काम 5 अध्याय में देखते हैं। मेरे विचार में यदि यह सिद्धांत आज कलीसिया में सक्रिय हो तो औसत कलीसिया या तो अस्पताल में होंगे या कब्रिस्तान में। मेरे प्रियो, इस पत्र के अनुसार एक आदर्श कलीसिया को हम देखेंगे। पहली बात है, व्यवस्था नियमानुसार होगी। दूसरा, शिक्षा में सुदृढ़ होगी। तीसरा, जीवन में पवित्र होगी। हर भले काम में तत्पर होंगे। यह नए नियम की कलीसिया का चित्रण है जो तीतुस को लिखा गया है। पौलुस का पत्र हमें प्रस्तुत करता है। तीमुथियुस को लिखे पत्र में कलीसिया को परिशुद्ध शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया है और तीतुस को लिखे पत्र में कलीसिया के आचरण के निमित्त परमेश्वर के विधान की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। तीतुस की पत्री 1 अध्याय उसके 5 पद में संपूर्ण पत्री का मुख्य पद है, मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। तीतुस का उत्तरदायित्व था कि वह क्रेते की कलीसियाओं में उचित व्यवस्था करे। मेरे प्रियो, अध्याय 1 में पौलुस कहता है कि कलीसिया को सुव्यवस्थित होना है। तीतुस की पत्री 1 अध्याय के 5 पद में वह कहता है कि कलीसिया परमेश्वर के वचन का प्रचार करे और उसकी शिक्षा दे। दूसरी बात हम देखते हैं 2 अध्याय के 1 पद में, तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। उसके कहने का अर्थ है कि कलीसिया विश्वास में दृढ़ हो। अध्याय 3 में हम देखते हैं कि कलीसिया भले काम करे। 3 अध्याय के 1 पद में लिखा है, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। दूसरे शब्दों में कलीसिया अनुग्रह से उद्धार पाती है और अनुग्रह का ही जीवन जीना है और अपने विश्वास के प्रदर्शन हेतु भले काम करना है। मेरे मित्रों, मैं तो कहूंगा कि आज ऐसी कलीसिया पाना अत्यधिक कठिन है जो इन तीनों शाखाओं पर चलती हैं। एक कलीसिया एक क्षेत्र में अच्छी है तो दूसरी दूसरे क्षेत्र में। आइए हम प्रत्येक को गहराई से देखें। पहले तो कलीसिया को सुव्यवस्थित होना है। कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस ने लिखा कि वह मर्यादा के साथ सुव्यवस्थित काम करे, 1 कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय के 40 पद में। आप कभी कभी कलीसिया में सुव्यवस्था की कमी को देखते हैं क्योंकि कुछ पदाधिकारी पूरी कलीसिया को अपने ही तरीके से चलाना चाहते हैं। ऐसी कलीसिया पादरी के लिए समस्या और दिल तोड़ने वाली बात होती है। कलीसिया को सुव्यवस्थित होना है और सेवकों के अधीन काम करना है। दूसरी बात, आप देखेंगे कि अनेक कलीसियाओं में उचित शिक्षा का अभाव है और उचित शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं युवा प्रचारकों को यही सुझाव देता हूं कि वे आराधनालय या एक प्रकार का राज्य स्थापित करने पर अधिक ध्यान न दें, केवल परमेश्वर का वचन सिखाएं और सुनाएं। संस्था इमारतों के निर्माण की अपेक्षा वे स्त्री पुरुष के जीवन निर्माण के लिए कार्य करें। यदि संस्था बनाएंगे तो उनके बाद आने वाला सेवक उसे ढा देगा, जिससे बनाने वाले पादरी को दुख होगा। अतः उसका लक्ष्य होना है कि वह स्त्री और पुरुषों का जीवन निर्माण करे। किसी भी कलीसिया का यही मुख्य ध्यान केंद्र होना चाहिए। अंत में कलीसिया हर एक अच्छे काम में तत्पर रहे। कभी कभी हम रूढ़िवादी शिक्षा पर अधिक ध्यान देते हैं, यद्यपि आवश्यकता से अधिक नहीं, और अच्छे काम अनदेखे से रह जाते हैं। कलीसिया को अच्छे कामों में व्यस्त होना है। जी हां, अनेक मसीही समस्याएं अपने कार्यक्रमों के लिए धन संग्रह में ऐसी व्यस्त रहती हैं कि वे देने की अपेक्षा सदस्यों से लेती ही रहती हैं। कुछ लोगों को आत्मिक ही नहीं सांसारिक आवश्यकता भी होती है। हमें मनुष्यों की सांसारिक आवश्यकता में भी सहायता करना चाहिए। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि बहुत सी कलीसियाएं मनुष्य की सहायता में तत्पर हैं। मैं ऐसी एक कलीसिया को जानता हूं जो उन लोगों में जाते हैं जो सामाजिक नहीं है और उनके लिए पढ़ते हैं, सिलाई करते हैं और अनेक अन्य काम भी करते हैं। यह एक अति मनभावन काम है। हमारी सरकार गरीबों और आवश्यकता ग्रस्त मनुष्यों की सहायता करती है, जो एक अद्भुत काम है। परंतु हम उन अकेलापन महसूस करने वाले लोगों के साथ बैठकर बातें कर सकते हैं, जो आज एक अत्यंत आवश्यक सेवा है। मेरे मित्रों, यह तीतुस को लिखे पत्र का सारांश है। अरूढ़िवादी कलीसियाएं सब कुछ भूलकर केवल अध्याय 3 पर ही पूरा ध्यान केंद्रित करती हैं। वे सुव्यवस्था और शिक्षा के अध्यायों को अनदेखा करते हैं। जब तक एक कलीसिया पौलुस द्वारा लिखी इन तीनों बातों को पूरा न करे, उसे नए नियम की कलीसिया कहलाने का कोई भी अधिकार नहीं है। मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन में और आगे बढ़ेंगे, तो आइए हम सबसे पहले इसकी रूपरेखा को देखें। पहला, कलीसिया एक संस्था है, जिसे हम अध्याय 1 में पाते हैं। इसके 3 छोटे भाग हैं। पहला देखते हैं प्रस्तावना, अध्याय 1 उसके 1-4 पद। दूसरा है एक सुव्यवस्थित कलीसिया में अभिषिक्त प्राचीन हो जो व्यक्त अनिवार्यताओं को पूरा करेंगे, 1 अध्याय उसके 5-9 पद में। तीसरा, क्रेतेवासियों की बुरी प्रतिष्ठा, अध्याय 1 उसके 10-16 पद में। अब हम दूसरे बड़े भाग में आते हैं, कलीसिया परमेश्वर के वचन का प्रचार करे और शिक्षा दे, यह हम 2 अध्याय में पाते हैं। इसके भी भाग हैं। पहला, कलीसिया उचित शिक्षा दे, अध्याय 2 उसके 1-10 पद। दूसरा, कलीसिया परमेश्वर के अनुग्रह की शिक्षा दे, अध्याय 2 उसके 11-15 पद। तीसरे मुख्य भाग में देखते हैं, कलीसिया भले काम करे, इसे हम अध्याय 3 में पाते हैं। इसके भी भाग हैं। पहला, भले काम उद्धार का प्रमाण है, 3 अध्याय 1-7 पद। और दूसरे भाग में आते हैं, पवित्र आत्मा के काम, भले काम वर्तमान और भविष्य के लिए लाभकारी हैं, इसे हम अध्याय 3 उसके 8-15 पद में पाते हैं। मेरे मित्रों, हम आगे बढ़ते हुए अब आते हैं अध्याय 1 में। इस पुस्तक के अध्याय 1 में आते हैं, जिसका विषय है कलीसिया एक संस्था है। तो इसमें हम पाते हैं प्रस्तावना। तीतुस की पत्री में प्रस्तावना चरवाहे के पत्रों के विषय लक्षणों में है, परंतु अन्य पत्रों के लक्षणों में नहीं है। आइए हम देखें तीतुस की पत्री 1 अध्याय उसके 1 पद, जहां पर लिखा है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है। लिखा है परमेश्वर का दास, यहां दास का अर्थ है बंधुआ दास। पौलुस कहता है कि वह परमेश्वर का बंधुआ दास था। पुराने नियम में स्पष्ट है कि बंधुआ दास स्वेच्छा से यानी कि स्वतंत्रता से अपने स्वामी की सेवा में जीवन अर्पित करता है। यीशु मसीह का प्रेरित, पौलुस अपनी प्रेरिताई की रक्षा कर रहा है। अपनी प्रेरिताई पर विशेष बल देने का उसका उद्देश्य है कि वह व्यवस्थित कलीसिया को निर्देश देगा। वह एक प्रेरित है और प्रभु द्वारा नियुक्त लेखक है। प्रभु यीशु अपने इस प्रेरित के द्वारा अपनी कलीसिया से संपर्क कर रहा है। तीतुस का पत्र प्रभु यीशु का हमसे संपर्क है। लिखा है परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास। पौलुस यह नहीं कहता है विश्वास के लिए, वरन यह लोगों के विश्वास, दूसरे शब्दों में परमेश्वर के चुने हुओं के लिए स्थापित विश्वास का मानदंड और प्रतिमान। आपका उद्धार पाना या ना पाना आपके विश्वास पर निर्भर करता है। मुझे बताएं कि आप प्रभु यीशु के बारे में क्या सोचते हैं। क्रूस पर उसकी मृत्यु के विषय आपका क्या सोच है, यह आपके लिए क्या अर्थ रखता है? आप उसके पुनरुत्थान के विषय क्या सोचते हैं? आपके जीवन में उसका अर्थ क्या है? मुझे बताएं कि क्या आप बाइबल को परमेश्वर का वचन मानते हैं? इस आधार पर मैं यह निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि आप परमेश्वर की संतान हैं या नहीं। यह प्रतिमान है परमेश्वर के चुने हुए लोगों का विश्वास। जी हाँ, परमेश्वर के चुने हुए। पौलुस उद्धार प्राप्त मनुष्यों को यही कहता है। यहां वह चुनाव के सिद्धांत की चर्चा नहीं कर रहा है। कहता है उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार हैं। मेरे मित्रों, यदि आपका सत्य जीवन आचरण से प्रकट ना हो तो वास्तव में आपके विश्वास के साथ कोई गंभीर समस्या है। मुझे एक प्रचारक के बारे में बताया गया जो शराब पीता था, गालियां बकता था और संगतियों में बैठता था। रविवार को जब वह सुसमाचार प्रचार करता था तब लोग समर्पण के लिए सामने आते थे। उसी समुदाय के एक पादरी ने मुझसे पूछा, यह कैसे हो सकता है कि वह पादरी समृद्ध हो रहा है? मैंने उससे कहा कि मेरे विचार में वह पादरी समृद्ध नहीं है। संभव है कि उसकी कलीसिया में बहुत लोग आ रहे हैं, परंतु वह प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का निर्माण नहीं कर रहा है। सत्य ईश्वर भक्ति लाता है, और यदि आप में ईश्वर भक्ति नहीं है तो आप में सत्य नहीं है। पौलुस इस सत्य पर विचार प्रकट करेगा कि सुसमाचार पर विश्वास करना ईश्वर भक्ति का जीवन उत्पन्न करता है, क्योंकि क्रेते के लोग परमेश्वर के अनुग्रह का दुरुपयोग कर रहे थे। उनका कहना था कि यदि वे परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए गए हैं तो वे कैसा भी जीवन जी सकते हैं। पौलुस इसके उत्तर में यहाँ प्रथम पद में कहता है कि परमेश्वर के सत्य पर विश्वास करने से जीवन में ईश्वर भक्ति भर जाती है। निसंदेह हमारा उद्धार अनुग्रह के आधार पर है, परंतु उसमें जीवन का अनुशासन भी है जो हमें एक उच्च स्तरीय जीवन की ओर ले चलता है। आप परमेश्वर के अनुग्रह को पाप करने का बहाना नहीं बना सकते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप अनुग्रह के कारण पाप का जीवन जी सकते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका उद्धार अनुग्रह के आधार पर नहीं हुआ है, वरन आपका उद्धार ही नहीं हुआ है। अनुग्रह द्वारा उद्धार का मतलब है ईश्वर भक्ति। मेरे मित्रों, आज आप दुविधा में ना रहें। इस बात को आप स्पष्ट रीति से तीतुस की पत्री के माध्यम से जान लें कि यदि आप कहते हैं कि आप उद्धार प्राप्त व्यक्ति हैं तो आपके जीवन में ईश्वर भक्ति होना है। यदि ऐसा नहीं है तो निश्चय ही आपको जांचने की आवश्यकता है। आज कई कलीसियाएं इस बात का दावा देते हैं, करते हैं कि वे उद्धार प्राप्त कलीसिया हैं, परंतु कई बार उनके जीवन से ये बातें हमें देखने को नहीं मिलती है। आइए हम आज के इस अध्ययन के द्वारा अपने जीवन को जांचें, अपने विश्वास को देखें और प्रभु के निकटता में आएं और देखें कि मुझ में ईश्वर भक्ति है या नहीं। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। इतना ही नहीं, हमने आज इस अध्ययन के परिचय और रूपरेखा को देखा है। अगले अध्ययन में हम इसके अध्याय में जाएंगे और वचनों से अध्ययन करेंगे। कृपया आप अगले अध्ययन में अवश्य आएं और परमेश्वर के वचन के द्वारा अवश्य ही आशीषों को प्राप्त करें। आज के इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 0965143339। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
ईश्वर का संदेश लेकर यीशु यहाँ पर आए थे, प्यार ही प्यार सिखाने हमको यीशु यहाँ पर आए थे।
ईश्वर का संदेश लेकर यीशु यहाँ पर आए थे, प्यार ही प्यार सिखाने हमको यीशु यहाँ पर आए थे। मर के जी उठे वो अपनी यादें छोड़ गए, छोड़ गए।
ईश्वर का संदेश लेकर यीशु यहाँ पर आए थे।
उनके हाथों शस्त्र थे, अहिंसार थे, जिनके नाम थे। उनके हाथों में दो शस्त्र थे, अहिंसा और प्रेम, जिनके नाम थे।
हिंसा न करो ये उनका वचन, प्यार से जीतो तुम सबका मन। हिंसा न करो ये उनका वचन, प्यार से जीतो तुम सबका मन।
ईश्वर का संदेश लेकर यीशु यहाँ पर आए थे, प्यार ही प्यार सिखाने हमको यीशु यहाँ पर आए थे।
उनके नाम से मन को सुकून मिलता है, उनके चरण पे हो मस्तक दिल हमेशा कहता है। सिर्फ उनके नाम से मन को सुकून मिलता है, उनके चरण पे मस्तक हो दिल हमेशा कहता है।
संदेश लेकर यीशु यहाँ पर आए थे, प्यार ही प्यार सिखाने हमको यीशु यहाँ पर आए थे।
मर के जी उठे वो अपनी यादें छोड़ गए, मर के जी उठे वो अपनी यादें छोड़ गए।
ईश्वर का